नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानु शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबेगो, अर्जेंटीना और ब्राजील की नामीबिया की अपनी सफल 5 देशों की यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में भारत और नामीबिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान 3 प्रमुख घोषणाएं भी की गई। इस वर्ष के अंत में नामीबिया में डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करना और भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक पहलों आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में नामीबिया का प्रवेश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऋण वसूली प्रक्रिया निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक होनी चाहिए। साथ ही ये रिजर्व बैंक की निष्पक्ष प्रक्रिया संहिता के अनुरूप होनी चाहिए। नई दिल्ली में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जुड़े संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वित्तीय समावेशन की आड़ में वित्तीय शोषण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋण देने के लिए आक्रामक मार्केटिंग नहीं की जानी चाहिए तथा इसे लोगों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि ऋण के दरें भी तक संगत होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ये आवश्यक है कि वे प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहकों की सुरक्षा को अपने मूल सिद्धांतों और नैतिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सुदृढ़ बनाने हेतु एक रोडमैप जारी किया। आयोग के अनुसार यह रोडमैप पूरे भारत में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की भूमिका और कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को क्षेत्रीय नवाचार, विज्ञान प्रगति और सतत विकास के सशक्त प्रवर्तक के रूप में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक संरचनात्मक कमियों, अवसरों और सुधार प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। यह इन परिषदों की प्रभावशीलता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधारों, क्षमता निर्माण प्रयासों और रणनीतिक साझेदारी के एक व्यापक मिश्रण का आह्वान करता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक शुरू हुई। इस बैठक का उद्देश्य देश के पूर्वी हिस्से, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र सरकार की विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री पार्वती फरीदा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य मंत्री विजय चौधरी बैठक में भाग ले रहे हैं। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नर्मदा के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 1 दशक में देश के उच्च शिक्षा ढांचे में अमूलचूल परिवर्तन आया है। इस दौरान बहुमुखी एवं समग्र शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार एवं चिंतन कौशल विकास, शिक्षण एवं अधिगम में प्रौद्योगिकी के एकीकरण और संस्थागत प्रशासन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को और अधिक गतिशील बनाना है। केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड राज्यों को 1,066 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। ये राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते ने आज विधायक चो जिग्नो नामचुंग की उपस्थिति में दुईमुख स्थित बोमकाकर मिशन स्कूल में लेट्स स्पीक अरुणाचल कार्यशाला का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने लेट्स टॉक अरुणाचल के संस्थापक पोरसुम ओरी की पहल और इस तरह के सार्थक कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्कूल की सराहना की। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।